ओ शांति। पूर्वजों की कहानी सुनने में सबको बड़ा आनंद आता है। क्लासेस तो बहुत सुनते रहते हैं। इस ग्रुप में जिन्होंने दादियों की पालना ली है वहां तो उठाएंगे बहुत कम है क्या? दादियों में मान लो दीदी की तो बहुत कम लिया होगा। दीदी की पालना लेने वाले हैं, दीदी मनमोहिनी, एक बेटी माता जी अच्छा 83 के पहले जो आए होंगे उनको मिली होगी। दीदी 83 में अव्यक्त हुई। और दादी प्रकाश मणि की कितने लोगों ने पालना ली, इसमें है 10-12 लोग, वो भी 10-12 ही है। उधर माताएं हाथ उठा रहे हैं बहने। दादी जानकी जी की तो बहुत हैं। दादी जानकी जी आपके पास आई थी इसलिए। गुजरात दादी की तो बहुतों ने ली होगी। बाबा ही उनसे मिला हमको, तो जिन्होंने बाबा से मिलन मनाया माना गुजरात दादी से मिले, तो वो कौन कौन है? अच्छा जो नहीं है वो हाथ उठाओ, इसमें तो हैं काफी, ये भी बैठे हैं बहुत सारे हैं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर वो भी दिन प्यारे थे, ये भी प्यारे हैं, ऐसे नहीं सोचना हमको तो कोई मिला ही नहीं। लेकिन मुझे आत्मा का एक ऐसा भाग्य रहा तो जो सभी दादियों की पालना मिली, सभी दादियों की, चाहे वो मधुबन में रही चाहे बाहर रही, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसी बाबा के घर में मिल गई जिसका सबका सब उससे प्यार, बाबा से प्यार तो बाबा की मुरली से प्यार, और मुरली के प्यार से के कारण मुरली बनाने वाले से प्यार, सुनाने वाले से तो प्यार है लेकिन जिसने उसको सेट किया भेजा टाइप किया लिखा उससे भी प्यार हो गया। तो हमें दादियों का बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत पालना मिली। एक छोटे बच्चे को जैसे पाला जाता है, एक एक चीज हमें इन दादियों ने ही सिखाई, क्योंकि मैं तो 16 साल की उम्र में आ गया, समर्पित हो गया, दुनिया का कुछ पता ही नहीं था, कैसे रहना है कैसे चलना है क्या ईश्वरीय नियम है मर्यादाएं हैं। भले क्लास तो हमारे घर में जब मैं 4 साल का था तभी से शुरू हो गया था। मम्मा ने डायरेक्ट जा करके गांव में 35 दादियों के साथ उस गांव में पाठशाला खोल के आई थी 1960 में। 1960 वाले कोई बैठे हैं? भाई लोग होंगे कोई कोई, 60 के पहले जिनका जन्म हुआ हाथ उठाओ। हैं कुछ हैं, माताएं भी थोड़ी हैं। तो 1960 में मम्मा उस समय कानपुर में आई थी, कानपुर के पास ही हमारा गांव है, लोग के घर है। तो पिताजी ज्ञान में निकले थे, उन्होंने कानपुर में आके मम्मा को कहा मम्मा अभी हमारे गांव की सेवा में आप चलेंगी। गांव में कोई प्रबंध तो था नहीं, न घरों में लेट्रिन बाथरूम होती न लाइट होती उस समय भी, अभी भी लाइट ऐसे ही है आती जाती है, लेकिन इतने पिछड़े हुए गांव में और ये गांव वालों के निमंत्रण पर मम्मा हाँ कर दिया, चलो बच्चे चलेंगे। 35 दादियों को लेके आई एक मिनी बस भर करके और 3 दिन रही वहाँ। एक नहर की कोठी थी, नहर कैनाल, और वहाँ रह करके पिताजी तो इतने नशे में इतने खुश कि सारे आजू बाजू के जितने छोटे छोटे गांव थे उन गांव वालों को कहा कि डायरेक्ट मातेश्वरी सरस्वती हमारे गांव में आ रही हैं माउंट आबू से, जिसको भी दर्शन करना है सब आ जाओ। ढोलक लेके गांव गांव में प्रचार किया था और 500 लोगों की सभा मम्मा के सामने किया। ये माइक नहीं था उस समय, लाइट ही नहीं थी, फिर भी मम्मा की आवाज बहुत तेज थी, जोर से बोलती थी, तो सबने मम्मा का भाषण सुना, मम्मा की क्लासेज की, मम्मा की पालना ली, और उसी गांव में फिर कई स्टूडेंट निकले। कौन संभाले? पिताजी को कहा तुम संभालो। तो ऐसे अलौकिक जन्म मिला। उसके बाद पढ़ाई होती गई, लेकिन कुछ कारण थे तो मैं मधुबन नहीं आ पाया साकार में। बाबा की पत्रों से बहुत अच्छी पालना हुई, और पत्रों में बाबा इतना प्यार से मेरा पूरा नाम लिखते थे, राजेंद्र प्रसाद बेटे को बहुत बहुत याद देना। राजू तो मधुबन वालों ने कहना शुरू किया, दादियों ने, राजू बन गया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नाम था स्कूल का। इस प्रकार से अलौकिक जन्म हुआ, अलौकिक परिवार में ही पालना हुई। इसलिए दुनिया क्या होती है, यहाँ तक मुझे ट्रेन का भी पता नहीं था 15-16 साल की उम्र तक। और हमारे पिताजी के बड़े भाई कुमार ही थे, लेकिन बहुत एंटी थे, ब्रह्मा कुमार नहीं बनना क्योंकि तुम इकलौता बेटा है, तीन के बीच में अकेला है, तीनों की प्रॉपर्टी है, दुकान है, घर है, वारिस है तुम एक, इसलिए कहीं नहीं जाना तुमको, क्योंकि उनको पता था कि अगर ब्रह्मा कुमारी में चला गया तो कुलदीपक कौन बनेगा। कुलदीपक की बड़ी चिंता होती ना, माताओं को भाइयों को ये चिंता रहती है, लेकिन उनको क्या पता कि भगवान इनके घर का कुलदीपक है। तो मैं जब पहली बार आया, 9th में पढ़ता था, ऐसे छुट्टी मांगी, उन्होंने कहा जाओ, भले जाओ, घूम करके आ जाओ। ये पता नहीं था कि बाबा के घर में जाएगा तो आएगा ही नहीं। तो मैं एक साल के लिए गया था वापस, 71 में आया। दादी ने कहा कि, दीदी ने कहा रह जाओ, दादी ने कहा नहीं बेने, इंटरव्यू तो लेने दो, क्या है। जब इंटरव्यू लिया तो मुझे फेल कर दिया। कहती 15 साल 9th में पढ़ता है और इकलौता बेटा है, तेरे को कैसे मधुबन में रहने की छुट्टी मिलेगी, वापस जाओ पढ़ो जा करके। जब 18-20 साल के होना तब बताना। तो उस समय मैंने कहा दादी अभी तो विनाश होने वाला है ना, पढ़ के क्या करूँगा, बाबा तो विनाश का पहले से पाठ पक्का कराता है। तो दादी हंसने लगी, कहती ठीक है विनाश होगा, लेकिन अभी उम्र छोटी है, ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते, और अगर लगे कुछ तो पिताजी की चिट्ठी लेके आ सकते हो, छुट्टी चाहिए पहले, लेटर चाहिए। उनको था लेटर तो मिलेगा नहीं इनको। तो मैं गया और हाई स्कूल में पढ़ रहा था 10th क्लास में, और वो बांग्लादेश वाली लड़ाई लगी 71 लास्ट में दिसंबर में, और इतनी जबरदस्त सायरन बज जाती थी, तो जहां हम स्कूल में बोर्डिंग में रहते थे सारे के सारे ब्लैकआउट, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई कुछ, हमने अविनाश तो शुरू हो गया, और मुझे छुट्टी नहीं दिया मधुबन रहने की। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पेपर किया, हाई स्कूल किया, और पिताजी को बोला अभी मुझे नहीं रहना, मेरी दिल नहीं लगती यहाँ। उन्होंने इतना प्यार से चिट्ठी दिया, लिखा लेटर, वो तो पक्के बहुत निश्चय बुद्धि थे। तो मैं जब मधुबन आया तो दादी ने रोक दिया मुझे, गेट पर ही इधर आओ। एक तो मेरी ड्रेस बहुत, कोयले की ट्रेनें चलती थी, कोयले की ट्रेनों में आए थे, सारी काली काली, चेहरा काला, कपड़े काले, और सामान सहित गेट पर ही रोका, कहाँ से आया, क्यों आया भाई, चिट्ठी लाया है, दिखाओ पहले। और खड़े खड़े ही दादी चिट्ठी पढ़ने लगी, चिट्ठी पढ़ते ऐसे मेरे को देखा नीचे से ऊपर तक, अच्छा तेरे पिताजी को इतना निश्चय है। उन्होंने निश्चय में पता क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि इस धरा पर भगवान जब आए हैं, नई सृष्टि बना रहे हैं, उसमें अगर हमारे बच्चों को कोई सेवा का, सहयोग का चांस मिलता है तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। लेकिन इसको तो चांस आप दे, मेरे को भी दे देना, मैं भी समर्पित हो जाऊं। तो ड्रामा ऐसा बना कि आए मधुबन में 7 अप्रैल 1972 में आए थे, 52 साल पूरे हो गए, 53 चल रहा है, और सब कुछ मधुबन में ही सीखा। कर्मणा सेवाएं बहुत थी, रोटी बनाना, धोबी घाट करना, सवेरे पानी गर्म करना, सबके कमरों की सफाई करना, बहुत काम थे, स्थूल सेवाएं थी, कोई साइंस के साधन नहीं थे, सब मिनिमल, जैसे आप लोग गांव वाले चूल्हे पर रोटियां बनाते हैं, टंकी में पानी गर्म करते हैं। आजकल तो साइंस के साधनों ने बहुत सुख दिया है, लेकिन उस समय तो मधुबन में कोई साधन नहीं थे, और सब ऐसे खेल खेल में हंसते बहलते दादियों की प्यार पालना लेते लेते कर रहे थे। तो मैं 4 दादियों के पहले अनुभव सुनाता हूँ। बड़ी दादियों के तो सुनाए हैं, कई बार सुने होंगे शायद यूट्यूब में, क्लासेज में। मैं दूसरी दादियों के अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत सरल चित्त, बहुत मात्र स्नेह देने वाली दादियां थी हमारे मधुबन में। तो एक दादी थी भोली दादी। भोली दादी का तो नाम सुना होगा सबने, सुना तो है, बाबा याद करता उसको। और भोली तो सचमुच भोली थी, भंडारा संभालती थी, और बाबा के भंडारे की इतनी दिल से सेवा किया उन्होंने, आज्ञाकारी बनकर के, बाबा के अव्यक्त होने के बाद भंडारा माना, किसको कुछ चाहिए किसको कुछ चाहिए, सबको संतुष्ट करना। आज बाबा संतुष्टता का वरदान दे रहे थे। वो एक ऐसी आत्मा थी जिसने, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे मेहमान हैं, चाहे कोई भी वीआईपी आईपी आए, बोली इतने लोग आ रहे हैं, ये करना है, ये खिलाना है, ऐसी खातरी का। जी दादी, उन्होंने कभी दादी को ये नहीं कहा, दादी अभी हमारे पास इतने हैंड्स नहीं है, सेवाधारी नहीं है, कैसे होगा। दादी का कहना और भोली दादी जी जी, बस जी जी करते थे। मान लो मुरली सुनाते सुनाते कभी बरसात पड़ने लगी बाहर, और दादी ने देखा बरसात पड़ रही है, अरे भोली बरसात पड़ रही है, सुन रही है, आवाज आ रही है, अरे गरम गरम पकौड़े बना के ले आओ क्लास में। मुरली चल रही है, उधर पकौड़ा बन रहा है, इतना मुरली माइक पर सुन रही है वहां, और यहां से ओम शांति भवन से अगर दादी एक बार आवाज में बोल दे, बोली ये करना है, आज बहुत ठंडी है, गरम गरम हलवा खिलाओ, अभी ले आओ बना करके। कभी नहीं पूछा होगा दादी ऐसे तो, ऐसे आप ऑर्डर करती हैं, मैं तो इतना बिजी हूं, मैं नहीं, नहीं। दादी ने कहा माना, बस जी दादी, जी दादी। और हम लोगों को इतना प्यार करती थी, पालना देती थी, क्यों काम तो हमसे लेना है। तो भंडारे में अगर आटा गूंदना होता था तो कमरे में आ जाते थे, सबके भाइयों के हमारे पास आते, ऐसे कर बहुत अच्छा है, आज 5 किलो आटा गूंदे जा, वहां से पकड़ के ले आना, और ला करके फिर आटा देना, सिखाना, ऐसे पानी डालो, ऐसे ये करो, आटा गूंद दिया, बहुत प्यार से, अच्छा दादी जाऊं, हाँ हाँ भले जाओ, लेकिन मक्खन इतना दिया डब्बा करके, तुम जब खाना खाना ना तो अकेले मक्खन खाना, मक्खन देना, घी देना, बहुत पालना करना, कुछ नहीं है तो टोली तो खिलाएगी, ऐसे जाने नहीं देगी, सेवा किया है ना, तो सेवा का फल भी देना है। तो ऐसे भोली दादी भंडारी की संभाल करती थी। अगर हम कभी 1-2 दिन न जाएं खाने पर, कहीं चले गए, तो पूरी इंक्वायरी करती थी, वो क्यों नहीं आया, नाराज तो नहीं हो गया, तबीयत तो ठीक है, कोई कारण तो नहीं है जो नहीं आया भंडारे में। भेजती थी भाइयों को देखने के लिए, जाओ देख के आओ, बिस्तर पर हो तो बताओ, आ जाती थी। अगर मान लो हमको गला खराब हो गया, खांसी हो गई, गला बंद हो गया, कुछ भी हुआ, तो ऐसे नहीं कहे कि दवाई लाओ मैं दवाई बना के देती हूँ, बेसन का दूध बनाना, गरम गरम घी डाल के पका के बेसन का दूध बना के देना, और रात को अभी पी के सो जाओ, सुबह तक गला ठीक हो जाएगा। ज्यादा बंद हो गया तो हलवा बना के रोटी के अंदर लपेट के यहाँ बांध देना करके, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा सुबह तक। ऐसे बच्चों को पालना दी है और सब काम इतना प्यार से कराया। रोटी बनानी होगी, खड़ी हो जाएगी, आज इतनी रोटी बनानी है। विश्व रतन दादा और भोली दादी रोटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। उन लोगों को रोटी तो बनाना आता नहीं था भाई। रोटी 5-7 तवे पर डाली, बड़ा तवा होता था, और फास्ट अगर बना दिया तो कोई कच्ची रह गई, कोई पक्की रह गई, जो ऐसी रह गई उठा के ले आना, इधर आओ लाल देख, एक कच्ची रह गई है, कोई खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, ये जल गई ये फेंक देगा तो यज्ञ का नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारे पर सेवा का फल नहीं मिलेगा। करना है तो दिल से करना चाहिए, जो काम करो बहुत एक्यूरेट करो, ऐसे नहीं काम चलाओ करना है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को कर्मणा सेवाओं में दादियों ने साथ लिया, कराया। तो भोली दादी अंत तक जब तक रही तब तक दादियों को ये नहीं सोचना पड़ा कि आज रात को भोजन कम पड़ गया या किसी को मिला या नहीं मिला, या आज बहुत बच गया। मान लो 50 का ग्रुप आने वाला, उसमें 25 ही आए, 30 ही आए, तो 15-20 का अगर भोजन बच गया तो उसको कभी भी ऐसे नहीं, इसको गाय को दे दो, इसको इधर दे दो, उधर दे दो, सवेरे सवेरे उसका रूप बदल करके, इतना प्यार से उसकी सेलमानी बना करके, उसका अच्छी तरह से रूप बदल करके, चावल बच गए तो उसको छौंक लगा करके, एक बहुत सुंदर ढंग से, और इतना इंटरेस्ट से लोग खाते थे क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि रात का है, लेकिन एक चीज भी यज्ञ की नुकसान नहीं किया, एक दाना भी नाली में न जाए, एक पत्ता भी कोई सब्जी का व्यर्थ न जाए, यज्ञ में इकोनॉमी है। सिखाती थी, बताती थी, ऐसे करो ऐसे करो। तो आज जो यज्ञ हम देख रहे हैं इतना बड़ा, उस समय का यज्ञ अगर आप देखते तो एक एक बात के लिए बहुत कुछ अटेंशन था, बहुत ध्यान देना पड़ता था, जरा भी कुछ नुकसान न हो। माइयां मजदूर तो थे ही नहीं, हमें लोगों से सेवा करानी, और बहुत प्यार से, ऐसे नहीं। एक भाई ने गीत बनाया था, रमणी गीत है, सुनाता हूँ वो गीत निकला ना, सखी रे मैंने पायो तीन रतन, एक बाबा एक मधुबन एक मुरली, ऐसे ना गीत, सखी रे मैंने पायो रे तीन रतन, सुना है ना। तो एक भाई कहता है, दादी मैंने पायो तीन रतन, झाड़ू पोछा बर्तन। तीन रतन मिले मधुबन में आकर के हम लोगों को, शुरू शुरू में पहले झाड़ू मिली, सफाई करो, फिर पोछा लगाओ, और फिर बर्तन मांजो। इन्हीं तीन रतनों ने हम लोगों को समर्पित कराया है। आज कोई नई नई पहने आती ना पढ़ी लिखी सेंटर पर, ये काम करूंगी क्या मैं, इसके लिए मैं आई हूं क्या, खुद भाषण चाहिए। और बाबा कहते चाहे भाषण है चाहे वासन है, दोनों के मार्ग समान है, सिर्फ सच्ची दिल चाहिए। तो दादियों ने हम सबको इतना प्यार से सब कर्मणा सेवाएं कराई। धोबी घाट में थोड़ा हम मोटे कट्टे थोड़ा मजबूत थे ना शुरू से ऐसे, तो धोबी घाट में कहते छटका लगाओ, दो सेवाएं जो बहुत हार्ड थी शुरू शुरू में हमें मिली, 1-2 बजे उठ करके पानी गर्म करना, एक टंकी भर करके उसको गर्म करना, और सब उधर अमृत वेले का योग चलता था, उधर हमारी बाल्टियों की ठकाठक चलती थी। 2-3 भाई हम सब बहनों के भाइयों के कमरों में गर्म पानी पहुंचाते थे, रनिंग वाटर नहीं था, ठंडा पानी के नल तो लगाए बाहर बाहर, लेकिन गर्म पानी पहुंचाना पड़ता था। और उसके तुरंत बाद जब उधर मुरली क्लास चलती थी तो हमारा धोबी घाट चलता था, रात को भट्टी चढ़ाते थे और सुबह छटका लगाते थे, या धोबी लोग पाटे पर लगाते हैं ना, ऐसी मशीनें तो थी नहीं, तो हम लोगों को छटका लगाने की सेवा मिली थी, चाहे जितनी ठंडी हो बरसात हो कुछ भी हो, 7 बजे और हमारा छटका शुरू, आठ साढ़े आठ नौ बजे तक धोबी घाट का कपड़े धो के छाट करके फिर नील लगाने वाले सुखाने वाले वो दूसरे, तो जिसने छटका लगाया उसको डबल हलवा मिलता था। दीदी दादी दोनों आ जाती थी लेकर के बना करके, आओ आओ बहुत मेहनत किया है, गरम गरम हलवा खिलाएंगे, बैठ के साथ में बैठ के खिलाएंगे, इधर खाओ बैठो। बहुत सारे सेवाएं थी, लेकिन दादियों ने इतना प्यार प्रेम से दिया और हंसी मजाक भी करते, खेलते थे जैसे खेल खेल में करते थे, क्योंकि उनकी भाषा सिंधी थी और हम लोग हिंदी वाले थे, तो सिंधी भाषा में कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता था। तो भोली दादी बहुत प्यार से कहती, आज तुम तवे पर खड़े हो जाओ। दादी तवे पर कैसे खड़े होंगे, जल जाएंगे। अब सिंधी में तवे पर खड़े हो जाओ, झाड़ू पहन दो, तो एक भाई झाड़ू पहन के आ गया, झाड़ू लगाने के लिए कहते झाड़ू पहन दो, कहेगी आज सिगरी पर बैठ जाओ। अरे भाई सिगरी पर कैसे बैठ जाएंगे। तो दादियों की भाषा थोड़ी मिक्स होती थी ना, सिंधी हिंदी, तो कहती थी लाल समझो ना क्या बोल रही हूं, मेरे भाव को तो समझो, तुम भाषा को क्यों समझता है, भाषा में जाता है मजाक करता है मेरे से। ऐसे ऐसे दादियां इतनी भोली थी सीधी थी, और हम सब तो बच्चे थे खेलते थे उनके साथ, तो ऐसे करके भोली दादी का बड़ा वंडरफुल पार्ट था। और दूसरी दादी भूरी दादी थी, नई नई बातें सुनाता हूँ आपको। भूरी दादी बहुत टिप टाप रहती थी, सबको रिसीव करने की उसकी सेवा थी। जो ट्रेन में आता था आबू रोड में, मकान अपना उस समय नहीं था, बाद में संगम मोल लिया, तो आबू रोड में सिंधियों की सेवा करके सिंधियों के घर में जाके रहती थी रात को। रात को ट्रेन आती, सुबह ट्रेन आती, जिसमें जो आता बढ़ जाती, ठक 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 ठक, सब उसको जानते थे, चलने का भी तरीका था उसका, वो बहुत आराम से बहुत अच्छे ढंग से रहती थी। रिसीव करना, फिर उसको गाड़ियों में बिठाना, फिर उसको सब मैसेज देना, यहाँ ऊपर फोन तो थे नहीं ऑनलाइन, किसी के पास खड़े होकर के फोन कराना, इतना ग्रुप आ रहा है, इनको इतना भोजन चाहिए, इनको ये चाहिए, तो उसको पहले सेवा मिली थी पार्टी आने वालों को रिसीव करना और जाने वालों को सेफ करना। ट्रेन में खास ट्रेन की सेवा थी, वो एक ही बहन थी, बहन पूरी दादी बोलते थे, माँ थी वो उसे, और माता इतनी एक्टिव। फिर बाद में जब एज बड़ी हो गई तो सेवा के बिना दादियां नहीं रह सकती, ऐसे ने बिस्तर पकड़ ले, लास्ट तक भी सेवा किया, जिस दिन शरीर छोड़ना उस दिन तक भी सेवा किया, सबको खिलाने की सेवा लिया उसने, खाना खिलाने की, और सबका नाम से ध्यान था, कौन खाने पर आया कौन नहीं आया, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है। मधुबन तो छोटा था ना, बहुत छोटा परिवार था, मान लो मैं नहीं आया तो कमरे में आएगी, आज लाल कुछ हुआ क्या, खाना नहीं खाया है, मैं तेरे लिए सब्जी रखी है, मैं तेरे लिए ये रखा है, मैं ले आऊं, आएगा कि नहीं आएगा, दादी आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी, नहीं खाना है, नहीं नहीं कुछ तो खाना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, मैं ले आती हूँ। और भूरी दादी तो बहुत प्यार से बुलाना बिठाना खिलाना, जब तक उनकी उनके पास न बैठो तब तक वो संतुष्ट नहीं होती। तो ये भूरी दादी का बहुत सारा रोल रहा यज्ञ में, बहुत अच्छा प्यार से यज्ञ के सबको खाना खिलाया भोजन खिलाया लास्ट तक। लच्छू दादी का नाम तो सुना होगा, लच्छू दादी बाबा की ब्राह्मणी थी, बहुत एक्टिव थी, बाबा के साकार बाबा के साथ ही रही, साकार बाबा को हर प्रकार का ध्यान रखना खिलाना पिलाना सब बातों का। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो बाबा ने दीदी ने, दीदी मनमोहिनी रहने लगी थी मधुबन में, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी को सीट मिली थी मम्मा की, तो दीदी की सेवा में उसको रख दिया बाबा के अव्यक्त होने के बाद। दीदी की बहुत प्यार से संभाल किया हर चीज, क्योंकि दीदी की एज भी बड़ी हो गई थी, बड़ी हो गई तो उनके साथ रहना, उनके सब बातों का ध्यान रखना, खाना पीना खिलाना, सब कुछ वो करते थे, लेकिन इतनी एक्यूरेट भोग चतुर्वार का जो रखा जाता है कि सामने आता है, वो खुद ही सेट करती थी। बर्तन कितने साफ होने चाहिए, भोजन कितना, जो भोग बनता है वो कितना व्यवस्थित होना चाहिए, और चादर जो बिछाई जाती है, जो ऊपर कपड़ा डाला जाता है, वो कैसे एक्यूरेट होना चाहिए, एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जरा भी नीचे ऊपर हो गई तो सहन नहीं करेगी, डांटेगी, कोई भी ऐसे ऊपर नहीं कर सकता है, हर चीज एक्यूरेट। उसके अक्षर इतने अच्छे मोती जैसे थे, लिखती थी, और साथ साथ जो भोग के पर अमृत होता है ना, तो दीदी अपने हाथ से सबके मुख में अमृत पिलाती थी, अगर कोई नहीं आया तो उसके ध्यान में रहता था, आज ये भाई ये बहन अमृत पीने नहीं आए, हम मुरली क्लास के बाद अमृत लेकर के उसके कमरों में जाना, उसको अमृत पिला के आना, अगर भोग खाया नहीं या हम चले गए भोग के दिन कहीं, तो भोग स्पेशल कमरे में पहुंचा के आना, और फिर इंक्वायरी करना, तूने खाया या नहीं खाया, मिला या नहीं मिला, कोई दूसरा तो नहीं खा गया। और सिंधी के कारण कई बार दादी को कहते, दादी आप हमारे ऑफिस में आओ, बाबा की बात मुझे समझ में नहीं आई, ये राइटिंग मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि गुलजार दादी की राइटिंग, कुमारका दादी की, प्रकाशमय दादी की राइटिंग, दीदी की राइटिंग, और सबकी तो मैं पढ़ लेता था सिंधी, लेकिन दीदी की राइटिंग पढ़ने में बहुत भारी था, क्योंकि दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल नहीं गई थी, उनकी अपनी भाषा थी, और क्वेश्चन आंसर नंबर वन बनाती थी, और कहती थी, राजू तुम आओ ना, तुम सिंधी सीख गए, मेरी डायरी लो, और तुमको जो क्वेश्चन अच्छे लगे वो टाइप करके ले आओ। अब दीदी की राइटिंग पढ़ना, दीदी कभी कभी अपनी राइटिंग खुद नहीं पढ़ पाती थी, क्या लिखा है मैंने, तो मैं डायरी लेने जाता था, दीदी बहुत मेहनत लगती, नहीं पढ़ सकता हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लच्छू दादी है ना, एक कमलमणि दादी दिल्ली की और एक लच्छू दादी, वो दीदी की राइटिंग पढ़ना जानते। अच्छा लच्छू जाओ इसके साथ, इसको बताना, कोई ना समझ में आए ना पढ़ सके तो बताना मैंने क्या लिखा। तो ऐसे लच्छू दादी ऑफिस में आ जाते, मैं ले आता था ऑफिस में, और वो हमको बहुत प्यार से कोई भी चीज, एक बार जो बाबा याद करते ना कभी कभी, बाबा की डायरी, वो डायरी 1932 में बाबा ने लिखी थी, जब शिव बाबा आए उसके 4 साल पहले, 1936 में बाबा में प्रवेशता हुई है, और 32 की डायरी लच्छू दादी के हाथ में लग गई होगी, बाबा की रिक लिखी हुई, तो मेरे पास आई है, बाबा की एक डायरी मिली है 1932 की, तुम टाइप करेगा, मैं कराऊंगी, ले आओ दादी टाइप करते, क्या लिखा है बाबा ने। तो उस समय बाबा अपनी दरबार लगाते थे, जिस दरबार के बारे में बाबा कहते हैं दरबार लगाओ, क्योंकि राजाओं के साथ बाबा का व्यापार चलता था, तो राजाओं की दरबार में बाबा कभी कभी जाते थे, देखते थे राजा कैसे बैठा है, उसके मंत्री सब बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, एक एक से पूछता है, तेरा राज्य कारोबार ठीक है, तेरी एरिया ठीक है, सब संतुष्ट हैं, तो राजा इंक्वायरी करता था, एक एक से पूछता था। तो बाबा ने उसको राज दरबार, अपने आंतरिक दरबार लगाना शुरू कर दिया। जब मैं गुरु का ध्यान करता हूं तो ये मन क्यों भटकता है, किधर जाता है, क्यों ध्यान नहीं करने देता, इसको क्या चाहिए, मैं आत्मा तो बादशाह हूं। बादशाह बनकर के कहता है, ये मन तू मेरा वजीर है, तुम वजीर मेरी बात सुनता नहीं, मेरे को तेरे से स्पेशल बात करनी है। वजीर भी बड़ा तेज कहता है, तो आज कुछ आजकल कुछ दाल में काला लगता है बादशाह को, क्या करने लगे हो, कौन सा ध्यान करते हो, ऐसे ऐसे रूह ज्ञान बातें की, मन से किया, बुद्धि से किया, फिर आंखों से समझाया, तुम आंखें क्यों धोखा देती हो, क्यों भटकती हो, एक एक कर्म इंद्री की दरबार लगाई ऐसे सामने बिठा करके, मैं राजा हूं, आत्मा बादशाह है, और ये मेरे कर्मचारी हैं, ये मेरे वजीर हैं। तो दादी ने वो डायरी मेरे को टाइप कराई, हिंदी में टाइप हो गई, और टाइप हुई तो फिर मैंने थोड़ा सर्कुलेट किया, कहीं कहीं भेजा, लोगों को दिया, बाबा को पता चला, अभिक्त बाबा को, तो डायरी टाइप हुई है। तो बाबा ने फिर मुरली के अंदर उसका मेंशन किया है। कुछ दिन पहले भी चली थी कि बाबा की डायरी, तो ये 1932 की डायरी। और लच्छू दादी सब चीजें संभाल के रखती थी, कुछ नहीं देती थी, कोई देगी नहीं, कोई बाबा की चीज देगी नहीं, लेकिन जब शरीर छोड़ते तो किसके पास जाएंगे, वो सारा खजाना मेरे पास आ गया। क्योंकि बहुत सारा खजाना था बाबा का, साकार का, दादियों का लिखा हुआ। वहां से तो लाने नहीं दिया था बाबा ने कराची का, ये बच्चे यहीं जला दो, पुराना ज्ञान क्या करोगे, दबा दो। लेकिन फिर भी कुछ कुछ छिपा पीच के लाए थे, जो लाए थे वो अंत में हमें ही मिला। तो उसका टाइप करना, उसको पढ़ना, बहुत कुछ समझने को मिला क्या बाबा कहते हैं। तो लच्छू दादी ब्राह्मणी के रूप में भी थी, लेकिन अच्छी सेवाधारी, सब कुछ एक्यूरेट। कभी कभी जैसे बाबा को दादियों को खिलाती थी ना भोजन बना करके, हमारे भंडारे में भी अगर आ गई, अलग नीचे शांतिवन में जब बना, कहती थी मैं आप लोगों को सेलमानी खिलाती हूँ, कैसे बनती है, क्या रोटी बनती है, तुम लोगों को बनाना नहीं आता। हटा देती थी सबको, खुद बना के खिलाती थी। तो ये हमारी लच्छू दादी थी। लास्ट तक भी मुरली के नोट्स लिख करके, मुरली के नोट्स लेकर के भेजना, सब सिंधियों की सेवा उसने की होगी। सब सिंधी लोग जितने भी देश विदेश में हैं, सब के पास उसके लिखे हुए नोट्स होंगे, सबको भेजते थे मुरली से, प्रश्न उत्तर ये वो जो भी उसको मिलता था सब सिंधी में लिख के भेजते। तो ये हमारी लच्छू दादी थी। और एक दादी का सुनाता हूँ, बहुत सारी दादियों के अनुभव हैं। एक संतरी दादी थी। संतरी दादी नाम सुना है भाई बहनों ने? सुना है, देखा तो नहीं होगा, संतरी दादी को नहीं देखा। बिश्व किशोर दादा का नाम सुना है ना? बिश्व किशोर, विश्व रतन नहीं। कई बार बाबा कहता है ना ये फर्स्ट प्रिंस बनेगा सतयुग का, बिश्व किशोर। तो बिश्व किशोर दादा बाबा के लौकिक में भाई के बेटे बेटे थे, भतीजा बोलते हैं ना, भतीजा थे। और बहुत बाबा के प्रति बहुत भावना, बहुत श्रद्धा, बहुत रिगार्ड। बाबा की एक एक बात पर, एक एक कारोबार में बाबा के ऊपर कोई तनाव नहीं आना चाहिए, बाबा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कितनी सारी परीक्षाएं आई, कितने पेपर आए, शुरू से लेकर के जब दुकान को सेल किया, सेल नहीं किया, जब उसका पार्टनर को हिस्सा देना था, बाबा को तो नशा चढ़ गया, हीरे लगे पत्थर, क्या बिजनेस करना, नहीं करूंगा। बेचारा भागीदार रोता, समझाता रहा, बाबा आपको क्या हुआ, करोड़ों का बिजनेस इतना चल रहा है और आपको हो क्या गया है, आप नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूंगा, परख सकते तो आपके पास है, जौहरी तो आप हो। बहुत समझाया बाबा, कह रहे अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही, बैठा ट्रेन में चल दिया हैदराबाद, कौन संभालेगा। तो बिश्व किशोर दादा भतीजा जो था उसको बोला तुम जाके हिसाब कर ले, जाकर जो दे दे दे, अगर दुकान का पैसा देते हैं तो पैसा ले लो, और जवाहरात देते हैं जवाहरात ले लो। तो दादा जो विश्व किशोर दादा थे उनकी शादी हो गई थी, उनकी युगल का नाम संतरी था, संतरी बाबा ने रखा, नाम तो कोई दूसरा होगा। संतरे जैसी मुलायम, संतरू, इतनी कोमल, इतनी सरल, इतनी नेचर में जी, मैं आपको क्या बताऊं। और बाबा की नंबर वन संदेशी साकार में, कोई भी काम हो जाओ बाबा से पूछ के आ जाओ। शिव बाबा जब तक बताए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए, ब्रह्मा बाबा को बात कैसे करेगा, उनके तन में है। लेकिन संदेशी संतरी दादी है, और संतरी दादी को बिठाया और गई, फट से ले गई, 5 मिनट में संदेश ले आई, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ये कह रहा। बाबा की नंबर वन फेवरेट संदेशी थी। और एक बात सुना देता हूं, शायद नहीं सुनी हो पढ़ी हो। जब बाबा अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा, तो गुलजार दादी, संतरी दादी, संदेशी दादी, 5-7 संदेशियों को दादी ने, बड़ी दादी थी, बिठा दिया, जाओ पूछ के आओ बाबा कहाँ गया, किधर है, अभी आगे क्या करना है। शरीर छूट गया है, बॉडी रखी है सामने, और कोई को विश्वास ही नहीं होता बाबा ऐसे शरीर छोड़ेगा। जाओ जाओ पूछो, कोई को वतन में बाबा ने दिखाई दिया। गुलजार दादी गई तो पर्दा दिखाई दिया ऊपर, और ऊपर लिखा था ड्रामा। आकर के कहती ऊपर लिखा है ड्रामा, तो दादी कहती मुझे भी ड्रामा क्या ज्ञान है, ड्रामा नहीं, बाबा कहाँ है पूछ के आओ। तुम जाती थी ना वतन में देखने, बाबा ऊपर दिखता है, बाबा ऐसे है, बाबा ऐसे, अभी कहाँ गया। तो गुलजार दादी गई, फिर संतरी दादी गई, तो संतरी दादी में बाबा आए बॉडी होते भी, और प्रवेश होकर के फिर बाबा ने कहा बच्ची कहीं बाबा नहीं गया है, सिर्फ ड्रेस और एड्रेस चेंज की है। ड्रेस मिट्टी की थी, लाइट की ड्रेस में हूं, और एड्रेस मधुबन की थी, वतन में हूं। इसलिए जैसे इस पुराने शरीर का संस्कार करते हैं ऐसे करो, फिर बाबा बताएगा आगे क्या करना। तो संतरी दादी पहले पहले बाबा के शरीर छोड़ने के बाद गई, और शिव बाबा उनके तन में आए, और बाद में जब बॉडी का श्रृंगार किया गया, क्योंकि बाबा का डायरेक्शन मिला कि पूरे आबू में परिक्रमा दिलाओ, और सब भाई बहनों का यही विचार था कि पांडव भवन में ही बाबा का संस्कार, अंतिम संस्कार हो। तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली, सरकार से छुट्टी मिल गई। उसके बाद बाबा ने कहा कि इनको माउंट आबू का पूरा परिक्रमा दिलाओ, रथ घुमाओ। तो उसको श्रृंगार करना था, बहुत फूल आए थे चारों तरफ से। तो संतरी दादी फूलों का श्रृंगार करने बैठी तो शिव बाबा डायरेक्ट आ गए। वो अंतिम समय था। बाद में बाबा ने कहा इस बच्चे ने मेरी बहुत सेवा की है ब्रह्मा ने, इसलिए बाबा बच्चे का खुश श्रृंगार करेगा। संतरी दादी में प्रवेश हो, ये बात कहीं कहीं मैगजीन में लिखी हुई है, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मैं तो उस समय 2 साल के बाद आया हूं, अंतिम समय में नहीं आया था मधुबन, लेकिन ऐसे ऐसे संतरी दादी को बाबा ने यूज किया। फिर बाद में उनको थोड़ी हमारे जो स्टोर थे, मधुबन के स्टोर थे, जो हम लोगों को साल में ड्रेस मिलती है, सामान मिलता है, जो भी कुछ मधुबन वालों को समर्पित को मिलता है रहने का, यूज करने की चीजें, साबुन तेल पेस्ट ब्रश चप्पल जूता कपड़ा लत्ता जो भी मिलता साल में एक बार सबको, तो उसकी कंट्रोलर उसका सारा स्टोर उनके हाथ में था, और बहुत प्यार से सबको देती थी, बुला बुला करके क्या चाहिए, तुमको चाहिए लिख के दो क्या चाहिए। और सबसे पहले एक अनुभव सुनाता हूँ, जब मैं पहली बार आया था 71 में, तो जाने लगा तो दीदी ने बहुत युक्ति से, दीदी रखना चाहती थी मुझे, लेकिन दादी थोड़ी लॉ ला का बैलेंस था ना, लाफुल थी, कायदे से चलना है। तो दीदी ने कहा संतरी ये जा रहा है, इसकी अटैची मंगाओ। अटैची वो लोहे की होती थी पेटी। तो मैं तो डर गया, मैं कल जाने वाला हूँ, आज मेरी अटैची चेक होगी, मेरे पास है क्या अटैची में भाई, लोहे की अटैची है, 1-2 ड्रेस कपड़े हैं गाँव के रहने वाला मैं, कुछ तो ही नहीं। फिर भी कहती तुम अपनी अटैची ले आओ। तो मैं डरते डरते अटैची ले गया, कहती रख के जाओ सुबह ले जाना। अब सुबह में जब गया तो संतरी दादी ने मेरी अटैची इतना सुंदर ड्रेसेस से भर करके मुझे दी, कहती देख खोलो क्या क्या है इसमें। इसमें इतनी सुंदर पैंट बुशर्ट, उस समय वही सब पहनते थे, सब प्रकार की ड्रेस, फुल ड्रेस 6-7 मतलब 8 थी, फुल भरा हुआ पेटी। और तुम ले जाओ इसको। मैंने कहा दादी मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाएगा तुम? दादी गांव वाले सोचेंगे चोरी करके ले आया होगा। मैं कैसे ले जाऊंगा इसको? अरे तुम बाबा के घर से जा रहा है, रोज एक नई ड्रेस पहन के घूमना, नहीं तो लोग समझेंगे ना आश्रम में गया है, वहां क्या होगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग कैसे फकीर जैसे रहते होंगे, आश्रम के नाम से पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अरे बाबा के घर से तुम जा रहा है, लोग कहें हाँ ऐसे स्थान पर गया जो इतनी खातरी हुई इसको, फट से छुट्टी तुमको मिल जाएगी अगले साल। तो उन्होंने मेरी अटैची भर के मेरे को कपड़े संतरी दादी ने दिए समझा करके। तो मैं गया तो मैं तो पहना नहीं, कि बहुत बड़े बड़े थे, मैं छोटा था। मैं काटे पीटे क्या, हम मधुबन जाएंगे, देंगे वापस दे देंगे। फिर भी एक दो ड्रेस ठीक कराई, पहनी, और फिर जब वापस आया तो मैंने सारे कपड़े जमा किया। मैंने कहा दादी मैं आ गया, अभी मैं पहने नहीं। क्यों नहीं पहने, तुमको फिर भी छुट्टी मिल गई? हाँ मिल गई। तो संतरी दादी संभालती थी, लेकिन बाद में उनको थोड़ी सी दमा की तकलीफ होने लगी, बहुत आंखों की ठंडी नहीं सहन होती थी। तो फिर बड़ों ने, दादियों ने, बाबा ने उसको कलकत्ता में रखा। निर्मल संता दादी कलकत्ता में रहती थी, तो संतरी दादी कलकत्ता में रहती थी। और यहाँ मधुबन में शायद फरवरी में मार्च में बाबा सम्मेलन में आई थी। तो जिस दिन जाने का था, दूसरे दिन जाना था, तो शाम को मेरे को बुलाया। मेरा पर्सनल अनुभव इसलिए सुनाता हूँ। शाम को कहती है, राजू तेरे पास तो बहुत मुरली का खजाना है, बहुत प्यार था मुरली से, बहुत प्रश्न उत्तर हैं, बहुत सारी क्लासेस तुम टाइप करता है, तुम मेरे को अच्छा अच्छा खजाना दे के जाओ। तो मेरे मुंह से निकला, दादी अभी तो रात 8:30 बज गया है, मैं सवेरे दे दूंगा। सवेरे जब बोला तो दादी मेरे, तुम मेरी बात समझता नहीं है, मेरे को अभी चाहिए। दादी कल जाएंगी ना, मैं टाइप करके फोटो कॉपी करके बना करके अच्छा लिफाफा दूंगा। कहती नहीं नहीं, तेरे पास जितना है अभी, अभी रात को ले। सारा बना के ले गया, 9:30 बजे पहुंचा, देखा दिया दादी को, बहुत प्यार से टोली खिलाई, मिलन मनाया, दृष्टि दिया। रोज 4 बजे बाबा के पास योग में ट्रांस में चली जाती थी, संदेश ले आती थी लेटे लेटे ही। उस दिन उठी नहीं, रात को सोई, सवेरे जो उनको संभालने वाली बहन साथ में रहती थी, दादी उठी नहीं। क्या हुआ, हिलाया डुलाया है ही नहीं, सरे छोड़ दिया, चली गई बाबा के पास, कोई को पता ही नहीं चला। ऐसी निश्चिंत आत्मा और इतना बाबा के रत्नों से प्यार कि वो रत्न मेरे चारपाई पर होने चाहिए, मुरली पढ़ते पढ़ते मैं शरीर छोड़ूं, जैसे कोई फूल तैयारी होती है। तो दादी ने ऐसे मधुबन में ही विदाई ली थी। और संतरी दादी का भी एक बेटा है लौकिक में, अभी मैं गया था डलास अमेरिका में, तो हमने बुलाया, दादा आओ मिलने के लिए आओ, मैं आया हूँ आपके यहाँ। बहुत बुजुर्ग हो गया, करीब 80 साल के ऊपर है, बच्चे अच्छे, उसकी भी शादी हुई, परिवार है। तो भाई को भेजा एक, ने कहा बुला के लाओ, माउंट आबू का पड़ता तो खिलाऊं दादा को। तो दादा आया, 3 दिन मेरे साथ वहां रहा अमेरिका में, बहुत सरल, जैसे बोलो विश्व किशोर दादा को तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने 68 में शरीर छोड़ दिया था, लेकिन वो भी ऐसा ही बिल्कुल सकल सूरत मिलती, सरल स्वभाव। अभी तक वो अपनी सिलाई दुकान खोली हुई है, सिलाई करता है, अपना कमाता है और अपने हाथ से बना के खाता है, अमेरिका में रह करके, कोई परिवार वालों का नहीं खाता। 80 साल के ऊपर हो गया, 90 साल हो गया होगा, अभी तो 88 साल तो यज्ञ को हो गए, उसके पहले जन्म हुआ होगा, 90 साल के ऊपर होगा। कहने का मेरा भाव है कि ये सब दादियां बाबा के अनमोल रतन, जिन्होंने यज्ञ को इतना संभाला, इतना यज्ञ रक्षा किया, यज्ञ को इसे बढ़ाया, बहुत सारे पेपर्स को जैसे नैया हिलती डुलती है, कितना बेगरी पार्ट में कैसे कैसे रहे, कुछ नहीं चाहिए, त्याग की एकदम मूर्ति है। एक ड्रेस से चलाया होगा, यज्ञ पर लोड नहीं देना। जानकी दादी को जब पहले पहले भेजा गया तो 20 रुपया बाबा ने देके भेजा था, 20 रुपया केवल बॉम्बे जाओ। दादी वो 20 रुपया खर्च नहीं कर सकती थी, पैदल चल करके वहां रिक्शा नहीं करना, जाना सेवा करके आ जाना, सेंटर खोले बॉम्बे में। गुलजार दादी को तो कुछ दुनिया का पता ही नहीं था, ट्रेन में एक बार बिठा दिया, जाओ बच्ची लखनऊ में गवर्नर हाउस में सेवा करके आ जाओ। बाबा को बोलती, बाबा लखनऊ कहाँ है? तो बाबा कहते, अरे अंधों ने मुल्तान को ढूंढा, तुम त्रिनेत्री है, तेरे को लखनऊ नहीं मिलेगा। भेज दिया, ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन में बैठी जनरल डब्बे में, तो वहां सब बीड़ी पी रहे थे, बहुत धुआं हो गया, दादी को उल्टी आने लगी, कहां आ गए कलयुग में, नरक में। दादी उतर गई अजमेर में, जाना लखनऊ था, उतर गई अजमेर में और सीधा स्टेशन मास्टर के पास गई। कहती है तुम लोग क्या ट्रेन चलाते हो, इतनी ट्रेन में लोग बीड़ी पीते हैं, धुआं करते हैं, मेरे को तो उल्टी आती है, मेरे को लखनऊ जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो स्टेशन मास्टर समझ गया, उनकी पावर थी बोलने की भी, उनके ऊपर रूहानी रुहाब था बहुत, बाबा का प्योरिटी की शक्ति थी, योग का बल था। स्टेशन मास्टर कहता है आपके पास पैसा है, दूसरा टिकट बना दें। बोला पैसा क्या होता है पैसा क्या होता है, पैसे खुद पता ही नहीं मुझे, क्या पता है। बाबा ने टिकट लेके दे दिया, जाओ। तो समझ गया ये तो बड़ी सीधी सरल बहने बहने हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं दुनिया का। उसने फर्स्ट क्लास का टिकट बना के दे दिया, जाओ, इसमें बीड़ी कोई नहीं किएगा। और जब लखनऊ में पहुंची हो तो पैडल वाला रिक्शा, उसमें बैठी और उसको बोलती है तुम मुझे गवर्नर हाउस ले चलो। कहता दीदी गवर्नर हाउस में क्या है, वो जाने नहीं देंगे, वो तो सिक्योरिटी बहुत होती है। अरे तुम चलना, सिक्योरिटी वाले उसको रिक्शे वाले को, पैडल रिक्शे वाले को लेके गेट पर पहुंच गई। उसको बोलती है मुझे बाबूजी से मिलना है, नहीं बोला गवर्नर से मिलना है, मुझे बाबूजी से मिलना है। गवर्नर के लिए बोला क्या करेंगे, क्या काम है। अरे मेरे को मिलना है, उनसे बात करनी है। तो उसने समझा इनका कोई संबंध होगा, बाबूजी बोला ना जब, तो उसने सिक्योरिटी वाले ने छोड़ दिया, भले जाओ। तो जब बाबूजी के सामने पहुंच गए गवर्नर के हाउस में, तो गवर्नर कहता आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, क्या है। बोला हमको बाबा ने कहा है गवर्नर हाउस में जाके सेवा करना, तो मुझे मकान दे, मैं यहां सेंटर खोलूंगी। ऐसी भोली भाली थी दीदियां हमारी, दादियां। और सचमुच उसने मकान दिया, गवर्नर हाउस में ही पहले पहले लखनऊ में सेवा शुरू हुई। तो ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं इन दादियों के, इतने अनोखे अनुभव हैं। बाकी बात की बातें तो हम क्लासेज में सुनाते रहे हैं, लेकिन ये आज सुनाई पहली बार ही शायद। ठीक है, 11 बज गया है। दीदी दादी बहुत नज़दीक से पालना मिली है, दीदी मनमोहिनी की बहुत समय साथ रहे, पत्र व्यवहार लिखना पढ़ना, फिर वो अव्यक्त हुई तो सारी पत्रों की जवाबदारी मेरे ऊपर आ गई। दादी के साथ रहना, रोज बैठना एक घंटा दो घंटा, एक दिन भी अगर मैं मिस करूं तो कहाँ गया, क्यों गया, किधर गया, पत्र का उत्तर कौन देगा। तो रोज दादी, बड़ी दादी प्रकाशमय दादी के साथ बैठना, मुरली के ऊपर क्या करना क्या लिखना सब सिखाना बिठा करके। और गुलजार दादी जो संदेश लाती बहुत ध्यान से ऊपर जाके लिखना, और लिखते लिखते थक जाती, अरे राजू तुम आया ना, तुम मेरे संदेश फेयर कर दे, मैं दादी से ले आता था, तो मेरी राइटिंग पढ़ लेगा। हाँ मैं पढ़ लूंगा दादी, आप दे दो मुझे। तो दादी रफ लिखती थी और मैं फेयर करके उनको देता था। तो गुलजार दादी के पास भी बार बार जाना, बड़ी दादी के पास भी जाना, और फिर जब बड़ी दादी अव्यक्त हुई 2007 में प्रकाशमय दादी, तो लंदन से जानकी दादी आई, और जानकी दादी जी के साथ भी ऐसा ही पाठ रहा। वो तो बहुत तीव्रता तीव्र बुद्धि, पूरे विदेश को और देश को संभालना, साथ लेके चलना, कभी भी ये नहीं कहती थी तुम मेरे आगे बैठो और नोट्स लो, तुम मुझे देखो और मेरी सुनो। अब 15-20 पत्र उन्होंने पढ़े हुए, हमको पत्र नहीं दे रही, ईमेल से पढ़े हैं, मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ करके मेरे को जवाब लिखा रही बैठी, तुम लिखो, लिखो नहीं मैं सुनो, टाइप करके ले आओ। दादी कुछ नोट्स ले लो। नहीं नहीं मैंने बाबा के आगे कोई नोट्स नहीं लिए। तुम नोट्स क्यों लेता, तेरी बुद्धि कहाँ है, एकाग्र करो, मैं जो बोल रही हूँ सुनो और टाइप करके ले आओ। बहुत बड़ा पेपर था वो हमारा, और 10-15 पत्र ऐसे ही बोलती जा रही, फलाने को लिखो, ये वो बीमार है, वो ऐसा है, यहाँ ये है, वहाँ ये सब पढ़ा हुआ है, और मुझे ऐसे बोल रही है, और मैं कहती अब जाओ इसको बड़ा करके उसमें ज्ञान योग की पॉइंट लिख कर भेज दो सबको। अब मैं इतना एकाग्रता से सुनता, बहुत ध्यान से क्या क्या बोला, किसको बोला, नाम क्या है, सेंटर का नाम क्या है, सब सुन करके आता था। फिर कमरा बंद करता, ऑफिस बंद करता, कोई आके डिस्टर्ब ना कर दे, फिर टाइप करता, टाइप करके जो मेल किया भेजा, तीन दिन के बाद चार दिन के बाद तुमने मैंने फलाने को पत्र लिखवाया था भेजा है? हाँ दादी भेजा। अच्छा जो भेजा है अभी लेके आओ मुझे पढ़ना है। अब अगर मैं लेट करूंगा तो समझेगा अभी शायद भेज रहा है। तुरंत गए लेकर के घर तो कहेगी पढ़ेगी ऐसे देखेगी, तुम तो मेरे दिल की बात जानता है क्या? जो मेरे दिल में था वही उत्तर तूने दे दिया। कैसे दे दिया? ये था प्रोत्साहित करना, उमंग बढ़ाना। इतना उमंग बढ़ा देती थी, बहुत अच्छा लिखा बहुत अच्छा लिखा। तो ऐसे अच्छा अच्छा कह के अच्छा बना के चले गए। तो ये सब हमारी दादियों की मेहरबानी है। अभी भी हमारे ऊपर उनकी छतरी है, गए नहीं है कहीं, शरीर से गए हैं, लेकिन उनकी भावनाएं, उनके दिल का यज्ञ के प्रति प्यार, उनकी रगे, उनका हर बात में डायरेक्शन हम सबको मिल रहा है। शांति स्तंभ यहाँ शांति स्तंभ है, नीचे जाओ तो दादी का प्रकाश स्तंभ है, जानकी दादी जी का शक्ति स्तंभ बना है, गुलजार दादी का व्यक्ति लोक बना है। जहां भी बैठ जाओ ऐसे फुल अनुभव होता है कि वो हमारे साथ हैं, हमको गाइड कर रही हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। तो आज तक भी इन दादियों की पालना मिल रही है। जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा बाबा और ये दादियां यज्ञ को कहीं भी छोड़ेंगी नहीं, संपन्न बना करके साथ लेकर के जाएंगे। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि अभी कोई कहता नहीं है। पहले हम लोगों को भाई बुला करके कहते थे ये लिखो, ये डायरेक्शन दो, ये करो ये करो। अभी इतने साल हो गए, 18 साल तो दादी को हो गया व्यक्त हुए, कोई कहता ही नहीं क्या भेजो। अभी बाबा ही कहे या दादियां टच करें ये करो। तो मैं बाबा के पास बैठता हूँ, बाबा आपके बच्चे पालना तो आपको करनी है, मुझे क्या करना है? मुझे आपने अगर कोई सेवा दी है तो मैं यही समझता हूँ मैं बाबा आपका राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं। इस बुद्धि में कोई भी व्यर्थ ना आए, नेगेटिव ना आए, बस आप इसको यूज करो, बस आप यूज करो, ये आपका है बस। तो बाबा के आगे बैठता हूँ, जो वरदान लिखाना है लिखाता है, जो व्यक्ति सारे देना है देता है, मुझे क्या करना है? मैं थोड़ी कोई पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला तो वो है ना, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अपना बनाया है तो उसको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई भी प्रकार का अपना बुद्धि का व्यर्थ या नेगेटिव का कोई प्रभाव ना हो, इसका टेंशन रखना है। यूज करता है बाबा, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। कोई मेहमान करे आप ये लिखते हो, कहता मैं बुद्धू आदमी, स्कूल नहीं पढ़ा, कॉलेज नहीं देखा, यूनिवर्सिटी नहीं देखी, सिर्फ डबल एमए हूँ, डबल बीए हूँ, डबल एमए 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 मम्मा, डबल बीए 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 बाबा। तो मम्मा बाबा हमारे साथ हैं, वो लिखाते हैं पढ़ाते हैं कराते हैं, बाकी मैंने और कोई पढ़ाई नहीं किया। ओके, ओम शांति।